नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। अमेरिका की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य सहित सभी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकाबंदी शुरू की। ईरान ने कहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास आने वाले किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते यूरोपीय संघ ने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरों की चेतावनी दी। नाइजीरिया के योबे राज्य में वायुसेना की गोलीबारी के दौरान 100 लोग मारे गए। हंगरी में संसदीय चुनाव जीतने वाले पीटर मैग्यार ने लोकतांत्रिक मानकों को बहाल करने के लिए संविधान में बदलाव का संकल्प लिया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स के सामने 217 रन का लक्ष्य रखा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य सहित सभी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका की सेना ने आज शाम से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोक दिया है। हालांकि उसने स्पष्ट किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर अन्य गंतव्यों की ओर जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास आने वाले किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य की किसी भी अमरीकी नाकाबंदी में ब्रिटेन की भागीदारी से इंकार किया है। उन्होंने दोहराया कि ब्रिटेन ईरान के साथ किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सैन्य तनाव बढ़ाए बिना महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को खोले रखने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता पर बल दिया। ये नाकाबंदी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बंदरगाहों सहित ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगी। श्री स्टारमर ने कहा कि ईरान और अमरीका के बीच तनाव कम होने के साथ साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के उपायों पर ब्रिटेन लगातार सहयोगियों से परामर्श कर रहा है। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर प्रतिबंधों के वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी खुली नौवहन व्यवस्था की मांग का समर्थन किया। उधर ईरान ने अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी के जवाब में कहा कि इससे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बंदरगाहों की सुरक्षा सीधे खतरे में है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरों की चेतावनी दी है। ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा कि जलडमरू मध्य का लगातार बंद रहना गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है और नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करना यूरोप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वरिष्ठ नियुक्तियों की परामर्श समिति से स्वीकृति मिलने के बाद अपने सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गॉफमैन का इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस का अगला निदेशक नियुक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गॉफमैन की साख की सराहना की। नेतन्याहू ने गॉफमैन को एक असाधारण अधिकारी बताते हुए कहा कि उन्होंने चल रहे संघर्ष के दौरान विशेष रूप से प्रभावशाली सूझबूझ और लीक से हटकर सोचने की क्षमता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार गॉफमैन 2 जुलाई 2026 को 5 वर्ष के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्षेत्र में जारी तनाव और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के बीच इसराइल के खुफिया और सुरक्षा तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय में ये नियुक्ति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री अनवर बिन हिलाल बिन हमदान अल जाबरी से फोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत ओमान CEPA के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बातचीत पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके प्रभावों पर केंद्रित थी। इस बीच डॉ. जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल अहमद अल सबह से भी टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बातचीत क्षेत्रीय स्थिति और भारतीय समुदाय के कल्याण पर केंद्रित थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संसद के सदस्य मैनफ्रेड वेबर से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों में सकारात्मक गति को बनाए रखने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नाइजीरिया की वायुसेना द्वारा जिहादी विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 100 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला पूर्वोत्तर नाइजीरिया स्थित योबे राज्य के एक स्थानीय बाजार में हुआ। अधिकारियों ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए हमले में चूक की पुष्टि की है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि ये लोग शनिवार को योबे राज्य के एक गांव पर हुए हवाई हमले में मारे गए, जो बोर्नो राज्य की सीमा के पास स्थित है। बोर्नो जिहादी विद्रोह का केंद्र है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि नाइजीरिया में इस तरह की चूक आम बात है। हंगरी में संसदीय चुनाव जीतने पर पीटर मैग्यार ने आज लोकतांत्रिक मानकों की बहाली के उद्देश्य से संविधान में बदलाव करने का संकल्प व्यक्त किया है। बुडापेस्ट में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मैग्यार ने कहा कि उनकी पार्टी की अभूतपूर्व जीत यह दर्शाती है कि हंगरी ब्रसेल्स के साथ वर्षों के टकराव के बाद पूरी तरह यूरोप से जुड़ना चाहता है। विश्लेषकों के अनुसार मैग्यार की तिसा पार्टी को कल हुए चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत मिला है, जिससे उसे कानून के शासन को मजबूत करने और यूरोपीय संघ की अरबों यूरो की वित्तीय सहायता का रास्ता खोलने में मदद मिल सकती है। वहीं पिछले 76 वर्षों से सत्ता में रहने वाले निवर्तमान प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए हंगरी को यूरोपीय संघ की मुख्यधारा से अलग रखा था। भारत और बांग्लादेश ने सूचना और प्रसारण क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने आज ढाका में बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री जहीरुद्दीन स्वपन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के मीडिया और प्रसारण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई तरह की पहलों पर चर्चा की। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा 6 नागरिकों को जबरन लापता कर दिया गया है। ये घटनाएं प्रांत भर में जबरन लापता किए जाने और गैर न्यायिक हत्याओं की बढ़ती संख्या के बीच हुई हैं। डेरा बुगती जिले में बड़े पैमाने पर लापता होने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बलूच वॉइस फॉर जस्टिस ने कहा है कि यह कार्रवाई बिना वारंट, आरोप या उचित कानूनी प्रक्रिया के जारी हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 217 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 8 ओवर में 5 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका की नौसेना ने हॉर्मुज, जलडमरू मध्य सहित सभी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकाबंदी शुरू की। ईरान ने कहा है हॉर्मुज, जलडमरू मध्य के पास आने जाने वाले किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते यूरोपीय संघ ने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरों की चेतावनी दी। नाइजीरिया के योबे राज्य में वायुसेना की गोलीबारी के दौरान 100 लोग मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 217 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।